हो जाता है श्री कृष्ण उस प्रेम से बनते नहीं है बल्कि भूत नहीं होते हैं। इसलिए तीन कौन शुद्ध सत्व और वात्सल्य और मधुर रस और इनमें भी सबसे श्रेष्ठ मधुर रस इसके द्वारा बचित भूत हो सकते हैं दूसरे के द्वारा नहीं। इस चीज को दिखलाने के लिए स्वयं ये ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। ये सब यदि कृष्ण नहीं आते तो कोई नहीं जानता। ये साधारण जीवों के भी कृष्ण प्रेम बल्लभ गोपी बल्लभ हो सकते हैं उनके हृदय बल्लभ हो सकते हैं उनके प्रियतम हो सकते हैं उनके सखा हो सकते हैं उनके बेटे हो सकते हैं और इस लौकिक सद्बंधुवत भाव से जगत को प्रेम दे सकते हैं ये कोई नहीं जानता कभी संभव पर नहीं था। इसलिए कृष्ण इस धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए कृष्ण के रूप में प्रतिष्ठित हुए विशेष करके ब्रजेंद्र नंदन सुंदर के रूप में। इसलिए केवल ब्रह्मा जी की प्रार्थना से या गर्भदशाई की प्रार्थना से वो आए हैं ऐसा नहीं वो स्वयं इस चीज के लिए द्वापर के अंत में पधारे। एक बात हमें कुछ शंका पहले रहती थी वो शंका सहज ही गुरु जी की कृपा से मेरी दूर हो गई। अच्छा कृष्ण ये असुरों को जो मारते हैं चक्र से महाभारत में बहुत लोगों को मारा शिशुपाल का वध कैसे किया और लोगों का जो वध किया तो ये देखा जाता है ये वध किया तो कृष्ण ऐश्वर्य भाव से ही उसको हम देखते हैं और कृष्ण भी शत्रुओं का हनन करते हैं उनका ध्वंस करते हैं तो ये तो कुछ गड़बड़ी की बात है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये लेना पड़ता है अध्याहार हम लिख लेते हैं क्या उनके अंदर में महाविष्णु हैं वो ध्वंस करते हैं नारायण करते हैं किंतु इसकी एक बड़ी सुंदर मीमांसा हमारे अंदर में आई जिस समय में हम लोग सुदर्शन चक्र की प्रतिष्ठा कर रहे थे हैं? सुदर्शन चक्र है कौन ये है कौन सुदर्शन को जब हम लोग पूजा करते हैं प्रतिष्ठा करते हैं नृसिंह देव की उसमें प्रतिष्ठा करते हैं इसलिए ये सुदर्शन है कौन नृसिंह देव है ये समझो। इसलिए नृसिंह देव माने कृष्ण अपने हाथों से माने इंगित करते हैं और वही चक्र बन करके नृसिंह देव के रूप में वध करते हैं। किसको शिशुपाल का वध किया शिशुपाल का वध कृष्ण ने नहीं किया किसने किया सुदर्शन चक्र ने किया ना उनके हाथ से छोड़ दिया और सुदर्शन माने ये नृसिंह देव है। इसलिए जब सुदर्शन चक्र की प्रतिष्ठा होती है तो विग्रहों में बिना सुदर्शन चक्र के नहीं होगा तो ये सुदर्शन चक्र कृष्ण के हाथों में है। ये असुरों का संहार करके उसको दिव्य दृष्टि देकर के कृष्ण का दर्शन करा देते हैं इसलिए सुदर्शन कुदर्शन नहीं है। मारने से आदमी तो कट जाएगा तो वो दर्शन क्या करेगा किंतु सुदर्शन चक्र अर्थात नृसिंह देव भीषण रूप में कृष्ण के ही प्रकाश और लोगों को मार करके मार माने ये शरीर उसका अनर्थ छुड़ा दिया उसके कर्म से जो शरीर था इसको ऊपरी छुड़ा दिया और दिया क्या सुदर्शन जो उनको दर्शन कर सके। तो सुदर्शन क्या है सुदर्शन इस जगत में भगवान का दर्शन नहीं है सभी माया मुग्ध लोग हैं जिन जिन लोगों को देह में आसक्ति है अनर्थग्रस्त हैं लाख चेष्टा करने पर भी उनका दर्शन नहीं होगा। ये ध्रुव को जो हुआ उनके अंदर में अनर्थ था संसारिक भोग की कामना था किंतु एक क्षण के लिए एक झलक जो दर्शन हुआ वो नारद जी की विशेष कृपा से हुआ नहीं तो उनके लिए कभी लाख जन्म में संभव नहीं था। क्यों हुआ नारद जी कृपा करके अच्छा एक क्षण के लिए भी तो इसको दर्शन करा दें एक क्षण के लिए नारायण के रूप में वो भी नारायण के रूप में उनको दर्शन मिला और वो इसलिए नारद जी की ये विशेष कृपा थी। जिनके अंदर में कामना रहेगी और वो दर्शन कर लेगा ये संभव नहीं। क्या होने से भी उसी से सामंजस्य करना वो ब्रज में नहीं है, माया के ऊपर में है, ऐसे उसका सामंजस्य करो, किसी न किसी रूप में उसका सामंजस्य करना पड़ेगा। तो हम क्या बतला रहे हैं, नारद जी की कृपा से उनका हुआ। प्रहलाद महाराज जी को कामना नहीं थी, कोई भी कामना संसार की नहीं थी, उनको भी क्षण मात्र के लिए ही दर्शन हुआ। कभी कभी होता था भी तो क्षण मात्र के लिए, सब समय नहीं होता था। सबके अंदर में भगवत दर्शन करते थे, भगवत भाव, और भगवान में सब जीवों को दर्शन करते थे, बात तो ठीक है, किंतु कुछ ज्ञान का पूर्व था। वो ज्ञान माने ये ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान। इसलिए ब्रजवासियों जैसा उनके लिए दर्शन संभव पर नहीं था, क्योंकि ये भी अभी ऊपर का भी ये नहीं है, तत्व ज्ञान अभी परिपूर्ण है। जब तत्व ज्ञान ढक जाएगा माधुर्य भाव से, कृष्ण के सद्भावत भाव से, तो कृष्ण को इस रूप में बंसी बजाते हुए ब्रज के कृष्ण को दर्शन कर सकता है, ऐसे नहीं। इसलिए कभी कभी सुदर्शन चक्र के द्वारा किसी को मारा, जैसे कि ये जय विजय था प्रारंभ, फिर हुआ हिरण्यकश्यपु। अच्छा, हिरण्यकश्यपु जो था ये महाबलवान था, महाबलवान, ये सतयुग में था, और हिरण्यकश्यपु साधारण नहीं था। राम ने रावण को मारा, रावण से भी बहुत बलवान थे वो दोनों, और कृष्ण ने शिशुपाल को मारा, किंतु शिशुपाल से बड़े बली थे रावण और कुंभकर्ण, जैसे दस शिशुपाल को अपने बगल में दबा ले, ऐसे वीर थे। तो ये कंस को मार करके इनकी बड़ी बहादुरी नहीं है, बहादुरी कहाँ है कृष्ण की, उनको चक्र से मार करके सदगति दे करके फिर अब जन्म मरण से सदा के लिए हटा करके उनको जय विजय के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया, ये कृष्ण की महत्ता है। हतारी गति दायक केवल कृष्ण ही है, और कोई कृष्ण के अतिरिक्त और कोई हतारी गत दायक है, दायक माने स्वरूप इत्यादि की मुक्ति देने वाला उनको नहीं है। जैसे कि उन्होंने पुतना को मारा, बल्कि पुतना को मारा नहीं, पुतने अपने कर्मों से स्वयं मरी। कृष्ण ने किसी असुर को या कि भगवत अवतार किसी भी असुर को मारते नहीं है, वो अपने कर्मों से ही अपने ध्वंस को प्राप्त होते हैं। किंतु ऊपर से देखने में मिलता है, लगता है जैसे कृष्ण ने या राम ने या नृसिंह देव ने इनकी उनको वध किया। इस तरह से कृष्ण ने शिशुपाल दंत परस्कर को मारा, मार करके क्या कर दी, हतारी गति दायक, उनके स्वरूप में उनको स्थित करा दिया। उनका स्वरूप क्या था, जय विजय था। हो सकता है कि ये जय विजय कृष्ण के हाथों से जरा स्पर्श या मारे जाने के वजह से उसमें कृष्ण की कुछ कृपा हो गई हो, और किसी न किसी रूप में वो चैतन्य महाप्रभु के लीला में वही जगाई मदाई होकर के प्रेम को पाया, ये कृष्ण के उसको स्पर्श करने का ये फल है। नहीं तो महाप्रभु जी का दर्शन और उनका स्पर्श और स्वयं उनकी कृपा संभव नहीं था। जय विजय से भी अधिक जगाई बधाई का महत्व अधिक है, क्योंकि उनमें कृष्ण प्रेम देखा जाए, और कृष्ण कृष्ण कह करके रोते थे। जय विजय कृष्ण कृष्ण कर कर नहीं रोएंगे, वो रोएंगे भी तो रोएंगे नहीं, नारायण जी से लड़ेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे, उनकी दास्य भाव से सेवा कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण का किसी जिस रूप में विचार करेंगे उसी रूप में कृष्ण का महत्व है। विशेष करके कृष्ण का महत्व इस विषय में, कृष्ण के पास में जो आया फिर से जाने नहीं दिया, चाहे असुर अघासुर हो बकासुर हो, रामचंद्र जी अपनी प्रकट लीला में किसी के हृदय में प्रवेश किया, और कृष्ण जी अपने तो अपने सखाओं को, अपने गैया बछड़ों को, अपने सब परिकरों को लेकर के किस लिए, कारण क्या था? अरे उसकी जो बहन थी पुतना साधु का वेश बनाया, मैया का वेश बनाया, और कहा जो बेटा बेटा बेटा, तुझे प्यार करूंगी, तुम्हें दूध पिलाऊंगी, और तुम बाहर में पलंग पर लेते हो, तुम्हारी मैया निष्ठुर है, वो तुम्हारी मैया नहीं, मैं तुम्हारी मैया हूँ। ये जो मैं तुम्हारी मैया हूँ, ये जो कहा, चाहे भले ही ऊपर से कहा, ये मैया कृष्ण तुम्हार हूँ, यदि बोले एक बार कृष्ण तारे करे, तो पुतना ने ये कहा जैसे बेटा बेटा कहा और झट लेकर के अपनी गोदी में ले ली, बस इस सदवेश के वजह से कृष्ण ने किया उसको धात्री उचित गति दे दी गोलोक में, और कहा कि तुम्हारा भैया इत्यादि तुम्हारा वंश का जितना कितना वंश एक कई पीढ़ी उसमें जैसा भी हो सब तुम्हारे भाई परिवार सबको मैं उद्धार कर दूंगा। इसलिए अघासुर के इच्छा किया ये सबको मैं पेट में ले लूंगा और सबको बीच से मार डालूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हारी इच्छा परिपूर्ण हो, क्यों नहीं करेंगे। उसके भीतर में चले गए, भीतर में हृदय में तो गए ही, उसके ब्रह्मांड तक में तालू तक में गए और फोड़ करके उसमें से निकले। जिसके हृदय में गए हैं, जिसके पेट में गए हैं, फिर उसकी कोई सदगति होना बाकी रहेगा। जिसके अंगों के गंध से जिसको जलाने पर कैसा गंध निकला, जलाने में उसके एक वर्ष तक पड़ा रहा उसकी हड्डियां, और कृष्ण और बच्चे लोग उसमें खेलते थे, लुकालुकी का खेल खेलते थे, कोई भी दुर्गंध नहीं, बड़ा सुंदर सुगंध उसमें से आती थी। क्यों आती थी? जिसके मरने के बाद में 1,000-10,000 वर्ष बाद जला दिया गया शरीर और उसका भस्म पड़ा है, और गंगा जी जिनके चरणों की धोवन है, गंगा जी ने जाकर के उस जल से स्पर्श कर दिया उसके राख को, और हुआ क्या, सब लोगों का कितने कितने हजार 7,000 सागर वंश के सबका उद्धार हो गया। और कृष्ण जी इसके शरीर में प्रवेश कर दिया, किसी के हाथ दे दिया, उसका कुछ बाकी रह जाएगा? अद्भुत ये उनका चरित्र है, ऐसा दयालु कोई जगत में नहीं हुआ। उन्हीं का एक दूसरा रूप दयालु चैतन्य महाप्रभु हो सकते हैं, इसके अतिरिक्त और नहीं। जब उनके एक एक वैशिष्ट पर हम विचार करते हैं तो हृदय उच्छलित होता हो उठता है, कैसे उनकी दया है। किसी ने 1,000 प्रार्थना करने पर भी राम से कोई प्रार्थना करे रास कर सकेंगे? रामचंद्र जी किसी के सखा हो जाएंगे प्रार्थना करने पर भी? ओ हमारे कृष्ण रूप में आना, मैं तुम आपकी दासी बनकर के सेवा करने आ चाहती हूँ। यदि निसिंह से राम से द्वारकाधीश से कोई प्रार्थना करेंगे तो सुनेंगे नहीं, फिर वही कहेंगे जो हमारी ब्रज लीला में आना, वहीं पर जन्म ग्रहण करना, तब तुम्हारे ऊपर में हमारी कृपा होगी, तब वहां पर होगी। इसलिए दंडकारण्य ऋषि 7,000, जनकपुर की हजारों राजकुमारियां, जौथ की अजौथ की गोपियां जो ब्रज में देखी जाती हैं, विशेष करके कात्यायनी का जिन लोगों ने व्रत किया था, ये साधन परायणा है, ये जौथ की हैं। इन सब पर कृपा रामचंद्र जी ने नहीं की, दूसरों ने नहीं की, ये कृष्ण ही कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु झट कृपा करेंगे तो ये हो जाएगा। इसलिए कृष्ण की ऐसी महिमा है जो उसमें अभी अधिकार दे सकते हैं। इसलिए कृष्ण ने सखाओं का जूठा खाया, राम ने खाया कभी? ये संभव नहीं। हनुमान जी राम के साथ में एक पलंग पर सो सकते हैं? ये कभी नहीं। और कृष्ण के सखा यदि कृष्ण सो रहे हैं पलंग में यशोदा जी के घर में, तो सिद्धांत दौड़ता हुआ आएगा या सुबल आएगा या मधुमन, अरे सारे सो रहा है, सारे कहेंगे, और उसको जल्दी से उठाकर रगड़ देंगे उसके शरीर को, और रगड़ करके उसे जबरदस्ती उठा लेंगे, और क्या, एक ऐसी चीज है जो महाराज जी के सामने नहीं कहना चाहिए, इनके आराध्य देव राधा जी के चरणों में पैया पलोटते हैं, ये प्रेम का वशीभूत है, ये कृष्ण की महत्ता है, कृष्ण का ये क्या नहीं है, हानि नहीं है, उनके महत्व की हानि नहीं, जो राधा जी के पैया पड़ते हैं, गोपियों के चरण पर 50 बार गिरते हैं, ये उनका महत्व की चिंता नहीं है, बल्कि यही उनका महत्व है जो अपने प्रेमी भक्तों को कैसा सम्मान देते हैं, उनके वशीभूत हो जाते हैं, प्रेम में वशीभूत होना, यही कृष्ण का स्वरूप है। डिफेम उनका। इसी तरह से कृष्ण के जिस विषय पर हम चलेंगे उसी विषय में उनका महत्व है। रास और रस से है, मत समझो ये कोई गंदी चीज है। रस रसो वही सह, कृष्ण रस स्वरूप है। जब देवताओं में भी अस्पराओं के साथ में मिलन में कोई दोष नहीं होता क्योंकि स्थूल शरीर नहीं है, तो उस जगत में जो ये देखा जाता है रास कृष्ण से मिलन में, प्रेमा स्त्रियो बनचरी व्यभिचार दुष्टा कृष्णे च कैश परमात्मा ने रूढ़ भावा ननेश्वर भजते अभी दिशो पी साक्षात श्रेयस्तनोति अगदराज इवो। कुछ लोग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने शायद लिखा या कहीं और लिखा कि क्वेमा स्त्रियो बनचरी व्यभिचार दुष्टा, कहा ये बनचरी व्यभिचार दुष्टा ये गोपियां, और कहा कृष्ण में रूढ़ भाव। ये कृष्ण का गुण है कि ऐसे व्यभिचार दुष्ट वन जंगल में विचरण करने वाली आचार बचार भ्रष्ट ये गोपियां भी कृष्ण के प्रति गुण भाव पा गया। ये कृष्ण की जैसे कि बिना जाने हुए भी कोई यदि अवधराज युक्त, यदि कोई बिना जाने अमृत पी ले तो अमृत के गुण से वो अमर हो जाता है। वैद्य क्या औषधि का आप नहीं जानते हैं कि वैद्य ने कौन सी औषधि दी, बिना जाने सुने खा लेते हैं रोग दूर हो जाता है। उसी तरह से बिना जाने सुने भी व्यभिचार दुष्ट भी कृष्ण को जार मान करके भी उनसे यदि प्रीति करता है तो उसका कल्याण हो जाता है। यदि कोई एक कंस भय से और द्वेष से शिशुपाल इत्यादि ये लोग क्रोध द्वेष और भय से यदि कृष्ण को पा सकते हैं तो कोई जार भाव ही कृष्ण के प्रति रखे तो वो क्यों नहीं पाएगा, निश्चित रूप में पाएगा। उनको किसी भी रूप में हो कृष्ण के प्रति जैन के न उपाय न कृष्ण मनुष्य वे, इसलिए कृष्ण में जैसा भी भाव हो यदि कृष्ण में लगता है तो क्वेमा स्त्रियो व्यभिचार दुष्टा, व्यभिचार दुष्ट होने पर भी वो जगत बंदनीय हो गई। किंतु यहाँ पर कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जी गोस्वामी खबरदार है समस्त हो प्रेमा स्त्रियो बनचरी, ये गोपियों के लिए नहीं कहा गया। जो लोग कृष्ण का भजन नहीं करते, जो कृष्ण का भजन नहीं करती वो व्यभिचार दुष्ट है। क्वे इमा और कहा ये कृष्ण के प्रति रूढ़ भाव रखने वाली वृंदावन में विचरण करने वाली कृष्ण को विचरण कराने वाली महारूढ़ भाव युक्त ये गोपियां, और कहा ये सब संसार। उद्धव कहते हैं अपने लिए ओ सनातन गोस्वामी की टीका, नहीं रहती तो हम लोग अंधे रहते। कहां ये व्यभिचार दुष्ट वाले हम और कहां संसार वाले अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी, अत्री की पत्नी अनुसुईया, ये पतिव्रता की सीमा नहीं है। पतिव्रता की सीमा कौन है? मखेश्वरी क्रियेश्वरी सुधेश्वरी सुरेश्वरी रतीश्वरी प्रमाण शासने रमेश्वरी क्षमेश्वरी जयेश्वरी ब्रजाधिपे तिराधिके नमस्तुते। इसका पहले वाला श्लोक अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म याचिते हिमाद्रिजा कुलो मजा बिरिंच जाव हरणी करी शशी हमाम। राधिका जी का कोई नाम लेगा अरुंधति और ये सब इनों का उद्धार हो जाएगा। वो लोग पूर्ण रूप से नहीं आंशिक रूप से लौकिक दृष्टि से पतिव्रता है, नहीं तो पतिव्रता नहीं है। पतिव्रता कौन है? एकमात्र गोपियां हैं। उन गोपियों में भी पतिव्रता प्रधान मुख्य श्रीमती राधिका जी हैं पतिव्रता। क्यों? कृष्ण का तरीक उनके अंदर में बाहर में भीतर में बाहर में रोवे में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो महाभाव से न बना हुआ हो, कृष्ण से ही बना हुआ है। ऐसा कोई है जगत में? संभव पर नहीं है। इसलिए प्रेमाई ये कहां ऐसे रूढ़ भाव वाली गोपियां जो कृष्ण के प्रति ऐसा रूढ़ भाव है, ये गोपियों की महिमा बतला रहे हैं, कृष्ण की महिमा नहीं, गोपियों की महिमा है। इसलिए उसके बाद में कहा है बंदे नंद ब्रज की नाम असाध हो चरण सुहाग इत्यादि गोपियों की वंदना। इसलिए गोपियों की यदि कृपा होगी तो कृष्ण में ऐसा रूढ़ भाव हो सकता है, उसका जीवन सार्थ हो सकता है, अन्यथा कभी नहीं हो सकता है। ये गोपियों की महिमा है। इसलिए जितने मायावादी हैं गौड़ीय वैष्णवों को छोड़कर के, जिन लोगों ने श्रीमद् भागवत के इस श्लोक की व्याख्या की है, सब श्लोकों की व्याख्या एकदम गंदी है। वो सिद्धांत युक्त नहीं है, क्योंकि सब लोगों ने विशेष करके कल्याण प्रेस वाले जो कि गोरखपुर वाले, वो सब ये अर्थ सब चौपट है। इसलिए हम लोग नहीं पढ़ना चाहते उसको, किंतु हिंदी में उसके अतिरिक्त अभी नहीं है, इसलिए बाध्य होकर के पढ़ना पड़ता है। उसमें सिद्धांत का ज्ञान है। कृष्ण इसलिए सब आए गोपियों की महिमा दिखलाने के लिए, राधा जी की महिमा स्थापन करने के लिए कृष्ण का आविर्भाव हुआ। इसलिए व्यास देव जी प्रसन्न नहीं थे, नाग की कृपा से इस चीज को समझा, तब उन्होंने लिखा भक्ति योगेन मनसी सम्यक परिहिते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायां च जदपाश, पूर्ण रूप में निकले वहां पर प्रकाशित हुए, उनको दर्शन किया। ये पूर्ण कौन है? अपनी पूर्ण शक्ति के साथ में जबकि उनके साथ में सम्मानित हुए राधा जी के साथ में, तब वो पूर्ण पुरुष हो सकते हैं, नहीं अन्यथा नहीं हो सकते हैं। इसलिए कृष्ण का आविर्भाव हुआ दूसरे अवतारों में। इन गोपियों की महिमा का वर्णन नहीं किया, निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुखम खाद अमृत दर्शन ये सब नहीं किया। इसलिए कृष्णचंद्र जी स्वयं ये दिखलाया, गोपियों की महिमा का वर्णन किया। मैं रस स्वरूप हूं गोपियों को लेकर के, ऐसे ही कृष्ण की बड़ी महत्ता है। हमने थोड़ा सा स्पर्श किया, शाम को हम लोग देखेंगे, और अभी इसके बाद में आप लोग बैठे रहेंगे, परिक्रमा करने से तो गड़बड़ हो जाएगा, आप लोग बैठे रहिए। अब भागवत का पारायण हम लोग आरंभ करेंगे। सबसे पहले शुभानंद जी ब्रह्मचारी श्रीमद् भागवत, आपने तो शुभानंद ब्रह्मचारी जी अभी भागवत का पारायण आरंभ करेंगे। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना व्याख्या, और जहां तक हो दशम स्कंध आरंभ करना, जहां तक हो जाएगा चलेगा। और शाम को हम लोग ये 6 बजे तक करके, इसके बाद में कीर्तन करेंगे, और इसके बाद में हम लोग प्रवचन करेंगे। शाम को बड़े बड़े कलाकार लोग आएंगे, कलाकार नहीं करने से आप लोग नहीं आएंगे और दूसरे भी नहीं आएंगे, इसलिए कलाकार कह रहे हैं। यदि कहेंगे साधु संत लोग भगवान की महिमा का गान करेंगे, आप कम लोग आएंगे, और कहेंगे जी ओ यहाँ से कहाँ से कलाकार आए हैं, ओ काशी से बड़े बड़े कलाकार आए हैं, रेडियो के कलाकार आएंगे, आकाशवाणी के कलाकार आएंगे, दूरदर्शन वाले सब लोग आए, इसलिए उनको रख दिया है। तो होने के बाद में रात में 12 बजे उनका अभिषेक होगा, महाअभिषेक होगा। पुजारी लोग प्रेमानंद जी एक मन सवा मन दूध कह रहे हैं, एक मन दही बुरा वैसे ही, और जमुना का पानी है, गंगा जी का ही है, तो हाँ हजारों लाखों आदमी लेंगे, और उसमें जमुना जल और गंगा जल भी कम से कम तो कितना 10-5 क्विंटल पड़ जाएगा। अभिषेक होगा, अभिषेक भीतर ही में करना, नहीं तो जगह कम है, समय पर अभिषेक हो, और सब फल थोड़ा सा पंचामृत इत्यादि ले लेंगे। और कल नंदोत्सव होगा, जन्म की के संबंध में महाराज जी बैठकर भागवत का पाठ करेंगे, और इसके बाद में बधाई होगा। और कल एक विशेष है, कल ही नंदोत्सव के दिन में, कल ही नंदोत्सव के दिन में स्वामी जी का आविर्भाव दिन है, भक्ति वेदांत स्वामी जी का। यस्टरडे टुमारो, हाँ टुमारो द बर्थडे ऑफ स्वामी जी इज देयर,
So we will offer
Pushpanjali in his lotus feet. In the morning, at about 6:30 to 7:30. And after that we will take paran. Otherwise our whole upavas will be spoiled. And at about 10, Nand Baba, all the gopis will come from everywhere in Nand Bhavan with a bright card, with haldi, tamarind powder, with durva ghas, and they will do like this. And in Nand Bhavan mein tab khichad ban jayega. Usi ko kehte hain dabhi kada. Kada kehte hain. ये नंदगांव में बरसाना में और रावल में होता है. हम लोग ये तो नहीं करेंगे, हम लोग तिलक ले लेंगे उसका और फिर नंदोत्सव होगा. और इसके बाद में 10 बजे से 10:30 बजे सब वैष्णव लोग आएंगे, निमंत्रण आमंत्रित हजारों लोग आएंगे ब्रह्मचारियों से. और हमारे जो आए हैं नवयुवक लोग, विशेष करके हमारा निवेदन है कि आप लोग कल आलस्य मत करेंगे. शुभ व्यवस्था के साथ में ऊपर नीचे यहाँ चारों तरफ में लोगों को बैठा करके अपना विभाग कर लेंगे. अब विभाग करके ये सारी व्यवस्था सब करेंगे कि कैसे उन लोगों को अच्छी तरह से प्रसाद दिया जाए, भीड़ ना हो और सब काम हो जाए. इसके लिए आप लोग एक कमेटी का गठन करें और उनका नाम लिख लें. और लिख करके रामचंद्र जी हैं, दिल्ली वाले हैं, वो लोग हैं हमारे ब्रह्मचारी हैं, रसावसानंद जी और सभी लोग एक व्यवस्था करेंगे. कैसे हम लोग व्यवस्था करेंगे जिससे किसी को असुविधा ना हो और सभी लोग प्रसाद पा करके अच्छी तरह से हमारे गौड़ीय मठ का केशव जी गौड़ीय मठ का गुणगान करते हुए लौटे. लोग कहें ओह इतनी भीड़ थी जो भीतर में प्रवेश नहीं कर, सभी उन लोगों ने भुला करके और कैसे सम्मान के साथ में हमको प्रसाद दिया ये कहें. किसी के प्रति रूखा व्यवहार नहीं होना चाहिए, बड़े अच्छे तरह से व्यवहार करते हुए और उनको ले करके प्रसाद देना. हम लोगों ने बाहर में व्यवस्था की थी जहाँ पर एक साथ में 10,000 आदमी बैठ गए, किंतु ये वर्षा ने देखा जी ऐसा तुम लोग मत करो, गड़बड़ हो जाएगा. इसलिए हम लोगों को बाध्य होकर के यहीं पर हम लोग कर रहे हैं. गौर प्रेमानंद अभी श्रीमद्भागवत ले आओ और तुम बैठ जाओ. एक महामंत्र कर दो. बना देना जिसमें क्रमशः आज सारा दिन चलेगा. आप भी पाठ करेंगे, सभी लोग पाठ करेंगे यहाँ. और फर्स्ट वी हैव टोल्ड हियर रामचंद्र प्रभु विल एक्सप्लेन टू वेस्टर्न डिवोटीज.
Hari bol, Hari bol.
हरि हराय नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मह श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गौतम हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता जय रूप सनातन भक्त रघुनाथ श्री गोपाल भक्त दास रघुनाथ ऐसा गोसाई करी चरण वंदन जाय चरण घर सपुरा ऐसा गोसाई यार मुई शारदा चरण सभी भक्त जनम जनम मोरे अभिला गोसाई जब गजे राधा तनिला करे आनंद बल हरे भजन नवा गुरु वैष्णव पदे मजा आमा गुरु वैष्णव